एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से।
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जीवन भर राज करेंगे, जीवन भर राज करेंगे हम यीशु मसीह के साथ। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। जाने हम करते हैं एक ऐसे राज की बात, विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। विश्वास हम करते हैं एक ऐसे राज की बात। स्वामी यदि तुझको आज पुकारे, धरती आकाश का स्वामी यदि तुझको आज पुकारे, उसके हाथों में देना सब चिंताएं दुख सारे, महिमा में जीवन देगा बस करना विश्वास हम करते।
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन खुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज फिर से हम तेरे पास आते हैं, तेरे वचनों को सुनने जा रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारे मनों को और हमारे हृदयों को खोल दे जब हम तेरे वचनों को सुनते हैं। विशेषकर मैं मेरे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता, तो उनके संग हो, उनको तेरे वचन को समझने के लिए और तेरे राह में चलने के लिए अगुवाई कर और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा मदद कर। पिता परमेश्वर, मेरे संग हो, तेरा आत्मा दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुना ग्रहण कीजिए, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है जो दयालु हैं। आज का पाठ हमारा लिया गया है मत्ती 5:7 से, जो कि प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद वचन में से है, जो हम मत्ती 5 में पाते हैं। यहाँ पर लिखा है, धन्य है वे जो दयालु हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। शैतान परमेश्वर को एक कठोर और निर्दयी तानाशाह के रूप में चित्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन शास्त्र बार बार एक ऐसे परमेश्वर को प्रकट करते हैं जो असीम दया और अनुग्रह से युक्त है। यह उसकी इच्छा है कि हम भी उसकी तरह दूसरों पर दया दिखाएं और ऐसा करके हम दया प्राप्त करेंगे। प्यारो, हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करने के लिए कहा गया है। पांचवा आशीर्वाद जो आज का हमारा अध्ययन पाठ है, मसीहों को उनके पड़ोसियों के प्रति उनके दायित्वों के दायित्व से रूप बरूप कराता है, क्योंकि दूसरों के साथ वह साझा किए बिना दयालु होना असंभव है जो परमेश्वर ने स्वयं दया करके उन्हें दिया है। जो लोग भरे हुए हैं उन्हें बदले में उन लोगों को पोषण देने में मदद करनी चाहिए जो इस दुनिया में भूखे और प्यासे हैं, जिसमें हम रहते हैं। तुमने मुफ्त में पाया है, मुफ्त में दो, कहता है यीशु मसीह, जो कि मत्ती 10:8 में रिकॉर्ड है। यह प्रभु यीशु मसीह का अपने शिष्यों को आदेश है। यीशु स्वयं हमारे महान उदाहरण है, ईश्वरीय दया की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर के संतान कहलाएं, और हम हैं भी, लिखता है यहूना 1 पत्री में उसका 3:1 में। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा। 1 यूहन्ना 4:10 कहता है। यह प्रेम समस्त मानवता को अपने में समाहित करता है। ईश्वर की दया की कोई सीमा नहीं है प्यारो, सिवाय इसके कि पापी के हृदय की कठोरता के कारण वह अवरुद्ध हो जाए। वादा पक्का है, जो कोई भी हमारे प्रभु के उदाहरण का अनुसरण करते हुए स्वयं को दयालु दिखाएगा, उसे दया मिलेगी। मत्ती 5:7 कहता है, धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। वर्तमान भाषा दया को करुणा या क्षमा के साथ पहचानती है। इस सब को बाइबल में दिए गए अर्थ की स्मृति देने के लिए किसी को सक्रिय दयालु, अनुग्रह, कोमल दया और सबसे बढ़कर निष्ठा के विचार को जोड़ना होगा। वास्तव में बाइबल लेखकों के लिए दया विचार की दो धाराओं का एक साथ आना है, करुणा और वफादारी। अपने लोगों के प्रति ईश्वर की करुणा और वफादारी, और उनके प्रति और उनके गठबंधन के प्रति उनकी वफादारी। दयालु तो वे हैं जो अपने स्वर्गीय पिता के उदाहरण का अनुसरण करते हैं और अपने पड़ोसियों के प्रति करुणा दिखाते हैं, चाहे वे कोई भी हों, और जो ईश्वर के प्रति अपने दायित्वों में वफादार हैं। यीशु ने दयालु लोगों से जो वादा किया था, उसे हमें समझना चाहिए, जो कि मत्ती 5:7 और 5:7-12 में हम पढ़कर जान सकते हैं। परमेश्वर वादा करता है कि जो कोई दयालु होगा, उसे दया मिलेगी। यीशु ने भी अपने कई दृष्टांतों में इस सिद्धांत को दर्शाया है। यह वादा तब तक पक्का है जब तक कि यह हमारे प्रति परमेश्वर के रवैये से संबंधित है। प्यारो, परमेश्वर के बच्चे अपने जीवन के हर दिन इसका अनुभव कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक यह सिद्धांत लोगों के एक दूसरे के साथ संबंधों में भी सत्यापित होता है। स्वर्णियम नियम जो हम मत्ती 7:12 में पाते हैं, का सिद्धांत दूसरों के साथ हमारे व्यवहार और बदले में उनके द्वारा हमें दिए जाने वाले व्यवहार दोनों पर लागू होता है। परमेश्वर दयालु है। मूसा को उसने अपना चरित्र दिखाया। जब मूसा चाहता था कि परमेश्वर उसे अपना दृश्य दिखाए, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं अपने आप को दिखाऊंगा और तू मुझे पीछे से देखेगा। निर्गमन 34:6-7 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उसको अपना महिमा दिखाया, परमेश्वर उसको अपना चरित्र दिखाया, और परमेश्वर मूसा को दिखाया कि वह कितना दयालु और कृपामय है। मूसा को पहले से ही दिव्य उत्कृष्टता का रहस्य उद्घाटन प्राप्त हो चुका था, जब परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया था। उस समय परमेश्वर ने अपना नाम प्रकट किया, मैं वही हूँ जो मैं हूँ। निर्गमन 3:14 में हम पढ़ते हैं, इस दूसरे प्रगटीकरण के समय परमेश्वर ने मूसा को और उसके माध्यम से अपने सभी बच्चों को अपने चरित्र का सार प्रकट किया, जो असीम रूप से दयालु और अनुग्रहकारी है। इस प्रगटीकरण में उपयोग किए गए सभी शब्द पापी मानवता के प्रति परमेश्वर की असीम अच्छाई को रेखांकित करते हैं। जिन परिस्थितियों में यह रहस्य उद्घाटन किया गया था, वे उसके दयालु चरित्र पर और अधिक जोर देते हैं। ऐसा लगता था कि इज़राइल के बच्चों के बेफाई के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने अभी अभी पूजा करने के लिए एक सोने का बछड़ा बनाया था, और मूसा के धार्मिक क्रोध के प्रति। निर्गमन 32 में हम यह पढ़ते हैं, वास्तव में परमेश्वर ने चरित्र की इस विशेषता को पहले ही प्रकट कर दिया था, जब उसने अपने कानून को पत्थर की पेटियाओं पर लिखा था, जिन्हें मूसा ने अभी अभी तोड़ा था। वहां उसने कहा था, तीसरी आज्ञा में मैं यहोवा तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाएं मानते हैं उन हजारों पर करुणा क्या करता हूँ। निर्गमन 20:5-6 में हम पढ़ते हैं। वास्तव में संपूर्ण बाइबल बार बार इस विचार को दोहराती है, दया का पिता, जैसा कि प्रेरित पौलुस ने उसे पुकारा 2 कुरिन्थियों 1:3 में। भजनों के लेखक परमेश्वर की अथाह दया के बारे में गाने में विशेष रूप से प्रसन्न थे, जिसके लिए उन्होंने कभी भी अपील करना बंद नहीं किया। उन्होंने इसे हर जगह पहचाना, इसराइल के बच्चों के पूरे इतिहास में काम करते हुए उनके सभी कार्यों में उन्होंने पाया कि दयालु प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी है। भजन संहिता 103:7-8 में पढ़ते हैं, न केवल परमेश्वर दया में धनी है, इफिसियों 2:4 कहता है, बल्कि वह दया से प्रसन्न होता है, मीका 7:18। हम मती 12:7 से तुलना कर सकते हैं। भजन संहिता 25:10 कहता है, यहोवा के सब मार्ग करुणा और सच्चाई से भरे हुए हैं उन लोगों के लिए जो उसकी वाचा और चेतावनियों को मानते हैं। प्यारो, यीशु एक दयालु महायाजक है, जिसे हम जानते हैं। यूहन्ना 3:16 पढ़ के और इब्रानियों 2:17 में भी यह हम पढ़ सकते हैं। परमेश्वर द्वारा अपने इकलौते पुत्र को दिया गया उपहार, खोए हुए पापियों के प्रति उसके महान प्रेम और दया को प्रकट करता है। परमेश्वर पिता ने पतित मानवता से उतना ही प्रेम किया जितना उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु से किया, इसलिए वह हमारे लिए क्रूस पर मरने के लिए तैयार था। अपनी दया में उसने स्वर्ग को उसके सर्वोत्तम और सबसे अधिक से खाली करके यीशु को पृथ्वी पर दे दिया। केवल वही यीशु जो परमेश्वर के प्रेम की ऊंचाई और गहराई को जानता था, उसे प्रकट कर सकता था। पतित मनुष्य के लिए मसीह द्वारा किए गए असीम बलिदान से कम कुछ भी खोई हुई मानवता के लिए पिता के प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकता था। प्यारों, मसीह की अधिकांश सेवकाएं में पीड़ितों के प्रति करुणा और दया के कार्य शामिल थे। शैतान द्वारा सताए गए सभी लोगों को चंगा करने में उन्हें खुशी होती थी। यह दर्ज है कि जब वह पीड़ित लोगों को छूता था तो अक्सर करुणा से भर जाता था। उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों में महान प्रेम और दया स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। स्वर्गीय पवित्र स्थान में महायाजक पद की तैयारी के लिए यीशु को हमारा अनुभव है। इब्रानियों 2:17-18 में हम इस बात को पढ़ते हैं और इब्रानियों 4:16-17 में भी यीशु हमारा मनुष्य का पीड़ा और दुख को जानता है। मनुष्य बनकर वह इनको अनुभव किया है और वह हमारा याजक बनकर हमारी कमजोरियों को, हमारी मुश्किलों को वह समझता है। यीशु ही वह व्यक्ति था जिसने पतित मानवता को बचाने के लिए, स्वयं को देने के लिए स्वेच्छा से आगे आया। उसने अपने अवतार में वह मानव जाति के साथ एक हो गया, ताकि वह हमारे दुखों और परीक्षणों से परिचित हो सके जो हमें घेरे हुए हैं। हमारे लिए उसके प्रेम और दया ने उसे हमारे साथ परमेश्वर बनने के लिए प्रेरित किया, हमारे स्तर पर हम तक पहुंचा। वास्तव में परमेश्वर मसीह में था और संसार को अपने साथ मिला रहा था। 2 कुरिन्थियों 5:19 में हम यह बात पढ़ते हैं, परमेश्वर और उसके पुत्र ने हमेशा हमसे एक जैसा प्रेम किया है और मसीह की मृत्यु ने पिता को हमसे अधिक प्रेम करने के लिए प्रेरित नहीं किया। पिता हमें प्रेम करता है महान प्रायश्चित के कारण नहीं, बल्कि उसने प्रायश्चित प्रदान किया क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है। मसीह वह माध्यम था जिसके माध्यम से वह पतित संसार पर अपना असीम प्रेम उंडेल सकता था। हमारे स्वर्गीय पिता की स्वरूप में यीशु मसीह इस धरती पर आया हम सबों को परमेश्वर को दर्शाने के लिए। मती के सुसमाचार में इसके समांतर अंश में यह श्लोक इस प्रकार है, इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। मती 5:48। दूसरे शब्दों में जिस स्थिरता के लिए यीशु अपने शिष्यों को बुलाते हैं वह उस दया में व्यक्त होती है जो वे परमेश्वर द्वारा स्थापित उदाहरण के अनुसार दिखाते हैं, न केवल उन लोगों के प्रति जो उनसे प्रेम करते हैं बल्कि उनके शत्रुओं के प्रति भी जो उनसे घृणा करते हैं और उन्हें सताते हैं। हम इसे मत्ती 5:43-47 में पढ़ सकते हैं तथा लूका 6:27-35 में भी पा सकते हैं। प्यारो, परमेश्वर का चरित्र जो हमें प्रकट किया गया है हमारे जीवन का मानक है। हमें अधिक से अधिक उसके जैसा बनने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एक दूसरे पर कृपालु बनो और करुणामय बनो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे परमेश्वर ने मसीह के कारण तुम्हारे अपराध क्षमा किए। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर के अनुयायी बनो, लिखा इफिसियों 4:32-5:1। हर बच्चा अपने पिता के जीवन से जीता है। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, उसकी आत्मा से जन्मे हैं, तो आप परमेश्वर के जीवन से जीते हैं। आत्मा में निवास करने वाला मसीह एक ऐसा झरना है जो कभी सूखता नहीं है। जहां वे निवास करते हैं वहां परोपकार की अधिकता होगी। प्यारो, अच्छे सामरी का दृष्टांत जो हम लूका 10:25-37 में पढ़ पाते हैं लोगों के साथ व्यवहार करने में परमेश्वर की दया का एक आदर्श उदाहरण है। साथ ही यह इस बात का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन भी है कि मसीहों को अपने पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जैसा हम क्षमा करते हैं वैसा ही क्षमा किया जाएगा। मत्ती 6:12-14-15 में यह बात हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने यह बात कहे हैं। यीशु ने दया, क्षमा और न्याय के संबंध में पारस्परिकता के सिद्धांत को समझाया है। मत्ती 5:7, 6:12, 14-15, 7:1-2 में यीशु सिखाते हैं कि हम परमेश्वर से क्षमा तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं। दूसरों को क्षमा ना करने का मुख्य कारण जो हमारे साथ गलत करते हैं यह है कि हम अभी तक परमेश्वर की क्षमा की महानता से अभिभूत नहीं हुए हैं। उसकी क्षमा का अर्थ है जीवन और इसके बिना हम अनंत मृत्यु की निंदा कर रहे होते कि इस विचार से हमारे दिलों में इतनी कृतज्ञता भर जानी चाहिए कि अपने पड़ोसी के अपराधों को क्षमा करना उसकी क्षमा की तुलना में बहुत छोटा लगेगा। परंतु इस दृष्टांत की महान शिक्षा परमेश्वर की करुणा और मनुष्य की कठोरता के बीच के अंतर में निहित है। इस तथ्य में कि परमेश्वर की क्षमाशील दया ही हमारी दया का माप है। जैसा मैंने तुझ पर दया की है क्या तुझे भी अपने साथी सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी? यह राजा अपने सेवक से कहता है, उसी तरह परमेश्वर भी अपने दासों से, अपने लोगों से कहता है। प्यारो, हमें क्षमा किया जाता है इसलिए नहीं कि हम क्षमा करते हैं, पर हमें क्षमा किया जाता है जैसा कि हम क्षमा करते हैं। सभी क्षमा का आधार परमेश्वर के अनपेक्षित प्रेम में पाया जाता है। लेकिन दूसरों के प्रति हमारे व्यवहार से हम दिखाते हैं कि क्या हमने उस प्रेम को अपना बनाया है। इसलिए मसीह कहते हैं, जिस न्याय से तुम न्याय करते हो उसी से तुम्हारा न्याय किया जाएगा। मत्ती 7:2। क्षमा का अर्थ उससे कहीं अधिक व्यापक है जितना कि कई लोग मानते हैं। परमेश्वर की क्षमा केवल एक न्यायिक कार्य नहीं है जिसके द्वारा वह हमें दंड से मुक्त करता है। प्यारो, यह केवल पाप के लिए क्षमा नहीं है बल्कि पाप से मुक्ति है। यह मुक्तिदायक प्रेम का प्रवाह है जो हृदय को रूपांतरित करता है। दाऊद को क्षमा की सच्ची अवधारणा तब मिली जब उसने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर एक सही आत्मा नवीकृत कर। भजन संहिता 51:10 में हम यह पाते हैं। प्यारो, प्रेरित याकूब 2:12 में स्वर्गीय न्याय के महान और विस्मयकारी दृश्य को याद दिलाता है। परमेश्वर का नियम, जिसे वह स्वतंत्रता देने वाला नियम कहता है, वह मानक होगा जिसके द्वारा मनुष्यों के चरित्र और जीवन का न्याय किया जाएगा। परमेश्वर व्यक्तियों के लिए अपवाद नहीं बनाएगा और जिसने दया नहीं दिखाई है उसके लिए न्याय दया के बिना है। पद 13 कहता है, एक अच्छा आदमी अनुग्रह दिखाता है, भजन संहिता 112:15, और दयालु जीवन जीत जाएगा, याकूब 2:13। इस प्रकार पांचवें आशीर्वाद में यीशु द्वारा किए गए वादे पूरी तरह से साकार होंगे। यीशु जिस दया की बात करते हैं वह एक सक्रिय सिद्धांत है जो अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम के कार्यों में व्यक्त होता है। यदि ऐसा नहीं है तो दया का कोई मूल्य नहीं है। इस न्याय दृश्य में दया के कार्य हमें राज्य में प्रवेश के लिए परीक्षण के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी कारण से याकूब ने शुद्ध और निर्मल धर्म की अपनी परिभाषा में दया के कार्यों को शामिल किया है, याकूब 1:27। प्यारो, केवल वे लोग जो दूसरों के प्रति दयालु हैं न्याय के दिन दया की उम्मीद कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल दयालु लोग ही परमेश्वर के राज्य में अपना रास्ता पाएंगे। इसलिए प्यारो, आइए हम यीशु मसीह के वचनों को सुने, उसके दया को हम जो अनुभव किए हैं हम भी दूसरों के प्रति दया दिखाएं, ताकि हम उसके स्वर्गीय राज्य में बचाए जा सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता आज का वचन के लिए। तूने हमें सिखाया प्रभु यीशु मसीह जिस तरह दयालु था, हमें भी दयालु बनना है, दूसरे के प्रति दया दिखाना है। पिता हमें तेरा आत्मा दे, तेरा बुद्धि शक्ति दे, ताकि हम तेरे समान अपना चरित्र बना सके। हम तेरा आशीष चाहते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु आशीष देगा, हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। प्रभु यीशु के नाम से सुना ग्रहण कीजिए, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1-800-833-2231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़े, तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।